जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमदी डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविशिष्कोन फाउंडर आचार्य शिव दि होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या छह। सब लोग निकालिए बोलिए। न चेतन विन महाकतरन्नो गरीयो यन्वा जयेम यदिवानो जयेयुः, याने विहद्वा न जिजीविषाम देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। न चेतन विद्महा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः, याने विहत्वा न जिजीविषाम देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र चेतन विद महाकतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु याने वहत्वा न जिजीविसाम देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र शब्दार्थ बोली न नहीं च भी एतत् यह विद महा हम जानते हैं कतरत जो नहा हमारे लिए गरीयः श्रेष्ठ यत्वा अथवा जयेम हम जीत जाएं यदि यदि वा या नहा हमको जयेयुः वे जीतें यान जिनको एव निश्चय ही हत्वा मारकर न कभी नहीं जिजी विषामः हम जीना चाहेंगे ते वे सब अवस्थिताः खड़े हैं प्रमुखे सामने धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र अनुवाद मेरे पीछे बोलिए हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालें मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, ना चा एतद विद महा तत्रन्नो ग्रियो, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। यदवा जेम यदि वानो जे, हम उनको जीतें या वे हमको जीतें। अर्जुन के हाथ में दोनों हैं, अर्जुन चाहे तो जीत भी सकते हैं, अर्जुन चाहे तो हार भी सकते हैं। जो व्यक्ति जीत सकता है वो हार भी सकता है, है कि नहीं? जीतने वाला अगर हारना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन क्या उचित है हमारे लिए, हम उनको जीते हैं या वो हमें जीते हैं? है? क्यों? क्योंकि दोनों तरह से हमारी मौत है, हम दोनों तरह से हमारी मौत है। वो हमको जीते हैं तो भी हमारी मौत है, हम उनको जीते हैं तो उनको मार करके भी हम जीना नहीं चाहते हैं। तो दोनों तरफ से हमें मौत दिखाई पड़ रही है। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं कि जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं वे हमारे सामने खड़े हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई हल नहीं है इस समस्या का। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर वे युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें। यदि वे शत्रु को जीतते नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में ये उनकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे, अपितु वे अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वे सचमुच पुण्यात्मा थे। इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष थे। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में भाग 46, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुने। इस श्लोक में अर्जुन पुनः श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि पिछले श्लोक में उन्होंने युद्ध न करने के पक्ष में सबसे अधिक प्रबल तर्क ये दिया था कि भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों की हत्या करने से अच्छा है कि वे भिक्षा द्वारा जीवन का निर्वाह करें। तो इससे शुक्र में अर्जुन ने कहा था, परंतु फिर उनके मन में विचार आया कि हो सकता है कि इस युद्ध में इन गुरुजनों की हत्या ना करनी पड़े। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यदि ये इस युद्ध में उत्साह नहीं दिखाएंगे तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर राज्य प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल सही है ना, ये भी हो सकता है युद्ध में वो रहेंगे भी और उनसे युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके राज्य मिल जाएगा। वास्तव में यदि दुर्योधन भीष्म और द्रोण को बार बार इस बात का उलाहना नहीं देता कि उनका स्नेह पांडवों के प्रति अधिक होने से वे युद्ध में अपना पराक्रम नहीं दिखा रहे हैं, तो भीष्म और द्रोण के सामने ही धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाते तथा पांडवों को संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल गया होता। ठीक है ना, अगर वो दुर्योधन भीष्म द्रोण के पीछे नहीं पड़ता तो क्या होता, क्या होता, उनके सामने ही धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाते और भीष्म द्रोण नहीं मारे जाते। लेकिन दुर्योधन जो है पीछे पड़ गया भीष्म के और द्रोण के, है ना, तो फिर उनको मरना पड़ा। नहीं तो दुर्योधन मरता और भीष्म द्रोण उत्साह नहीं दिखलाते युद्ध में, मरे तो मरे अच्छा है, तो उनकी भी तो इच्छा थी कि ये मरे और पांडवों को राज्य मिले, लेकिन वो पीछे पड़ गया कि आप युद्ध नहीं कर रहे, आप युद्ध नहीं उत्साह नहीं दिखला रहे, अपना पराक्रम नहीं दिखला रहे। इस प्रकार से जो है ना, तो अर्जुन ने ये सोचा कि ये संभावना है तो ठीक है, फिर ये समस्या नहीं है कि जो ना भीष्म द्रोण को मुझे मारना पड़ेगा या वो मरेंगे। इस प्रकार अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है कि ये समस्या सुलझ जाए और उन्हें भीष्म तथा द्रोण को ना मारना पड़े। अब अर्जुन अपनी वही समस्या फिर से दोहरा रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उन्हें सुख नहीं मिलेगा। यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कतरन्नो गरियो, अर्थात वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन के मन में यही जिज्ञासा है कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे अपितु वे अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। क्योंकि अर्जुन अभी भी इसी दुविधा में है कि क्या गरीय, गरीय मतलब श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, है ना, अपने कल्याण की चिंता में है अर्जुन। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में दक्ष थे। श्रीमद् भागवत 11:29 में अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु को उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में यदु महाराज को उपदेश दिया है। किसने? अवधूत ब्राह्मण ने। लब्ध्वा स दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम् अर्थत मनित्यमपि अधीनः पूर्णम यते न पते तनु मृत्यु यावन नेत्रेय विषया खलु सर्वतः स्यात्। अर्थात अनेक जन्मों के पश्चात ये दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षीण होकर नष्ट नहीं हो जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्य है, किंतु कृष्ण भक्ति मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है। यहां पर अर्जुन साक्षात भगवान की संगति में अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, परंतु भगवान की संगति तो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलती, तो क्या करना चाहिए ना? शास्त्र कहते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को साधुओं की संगति करनी चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि उनका कल्याण किस प्रकार होगा, युद्ध में विजयी होने पर या युद्ध में पराजित होने पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन का मन कितना अधिक उनके बस में है। यद्यपि अर्जुन के पास युद्ध में विजय पाने की पूरी सामर्थ्य है, परंतु फिर भी वे सोच रहे हैं कि यदि पराजित होने में उनका कल्याण होता हो तो वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं। इस प्रकार की घटना श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में पृथु महाराज के चरित्र में मिलती है। पृथु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो अर्जुन में भी वो गुण है पृथु महाराज के। जिसमें पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का व्रत लिया, तो इंद्र ने विचार किया कि यदि पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने की उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इंद्र को कहते हैं शतक क्रतु, शतक्रतु माने जैसे 100 यज्ञ किए हैं, और 100 यज्ञ करने से उसको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। तो इंद्र क्या सोचते हैं, भैया हमारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये, अगर इन्होंने 100 अश्वमेध कर लिए तो हमारा रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, फिर हमारा नाम भी तो फिर शतक क्रतु नहीं रहेगा, या हमारे नाम के दो व्यक्ति हो जाएंगे शतक क्रतु, पृथु महाराज को भी शतक क्रतु कहा जाएगा, तो मैं अकेला फिर शतक क्रतु नहीं कहलाऊंगा। सबको अपने नाम की चिंता है, मेरा नाम किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिल जाएगा, ये तो ठीक नहीं है भाई। तो इंद्र को जना बहुत परेशानी हुई, कीर्ति नष्ट हो जाएगी मेरी, इसलिए वह 100वें अश्वमेध यज्ञ को पूरा ना होने देने के लिए बार बार किसी न किसी साधु का वेश धारण करके घोड़े को चुरा ले जाता था। किसी भी प्रकार से 100 यज्ञ ना हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो इंद्र जो है ना इस बात की बहुत चिंता कर रहा है, तो चुराता है, घोड़े को चुराता है। उस समय जब पृथु महाराज ने इंद्र को मार डालने का निश्चय कर लिया, तो ब्रह्मा जी ने आकर पृथु महाराज को शिक्षा दी कि वे इंद्र को ना मारे। पृथु महाराज के पास पूरी शक्ति है ना, लेकिन वो शक्ति उनके अधिकार में है, उनका मन उनके बस में है, भक्त हैं, इसलिए अपनी शक्ति का जो ना भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, और जहां आवश्यकता नहीं है तो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के पृथु महाराज को शिक्षा दी कि वे इंद्र को ना मारे। क्योंकि पृथु महाराज भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने उस 100वें यज्ञ को बंद कर दिया ताकि इंद्र आगे अधर्म ना करे। इंद्र अधर्म करता जा रहा है, उसका धर्म बढ़ता जा रहा है, इसलिए अच्छा है, ठीक है 100 अश्वमेध यज्ञ ना हो तो ना हो, ठीक है मुझे नाम नहीं चाहिए, नहीं तो 99 का चक्कर जानते हो बड़ा खराब होता है, 99 का चक्कर है कि, तो 99 यज्ञ किए उन्होंने, 100 यज्ञ पूरे नहीं किए, चलो ठीक है जाने दो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने व्रत लिया था, 99 यज्ञ पूरे हो गए, जानते 99 यज्ञ कितना समय में पूरे हुए, एक अश्वमेध यज्ञ पूरा करने में कितना समय लगता है, 1 साल। वो जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो पूरी पृथ्वी में विचरण करता है, उसके पीछे सेना सब राजाओं से युद्ध करती है, सब राजाओं को परास्त करती है, जो भी राजा उस घोड़े को पकड़े तब यज्ञ पूरा होता है। तो 99 यज्ञ इस प्रकार से पूरे कर लिए 99 साल में, और फिर भी 100वां यज्ञ भी पूरा हो गया, एक प्रकार घोड़ा 1 साल तक पूरे भूमंडल में वितरण करके वापस आ गया, और अब केवल पूजा होनी थी। सोचो तो 100 साल तो उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन तो अभी 100 यज्ञ पूरे नहीं हुए ना, तो कितना मतलब किसी व्यक्ति को दुख लगेगा, है कि नहीं। साल भर पढ़ाई करी और फिर जो है ना आखिर परीक्षा जो है ना नहीं दी, कहीं परीक्षा में नहीं बैठे। और व्यक्ति साल भर पढ़ाई करे और टॉप आने वाला है और परीक्षा में नहीं बैठता है तो कितना दुख होगा। वो टॉप आने वाला है, पूरे विश्वविद्यालय में उसे टॉप होने वाला है और वो जो ना परीक्षा में ना बैठ रहे तो कितना दुख होगा। तो पृथ्वी महाराज ने जो है स्वामी यज्ञ को करने में कोई दिक्कत नहीं थी, केवल घोड़ा था और घोड़े का पूजन होना था और कुछ इस प्रकार से मंत्रोच्चारण होने थे, आहुतियां होनी थी और बस सौ यज्ञ पूरे हो गए होते। 99 यज्ञ पूरे हो गए, स्वामी यज्ञ भी एक साल लग गया स्वामी यज्ञ में भी है, लेकिन ठीक है बंद कर दिया। पृथु महाराज के त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। इतना त्याग साक्षात प्रकट हो गए भगवान और बोले, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञों में विघ्न डाला है, अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है। अब देखो पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया तो भगवान प्रसन्न हुए, जबकि भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां उन्होंने यज्ञ को छोड़ दिया तो भगवान प्रसन्न हुए, है ना, और इंद्र को साथ में लाए पृथु महाराज से क्षमा मांगने के लिए। अतः उसे क्षमा कर दो, भगवान कहते हैं इंद्र को तुम क्षमा कर दो। इस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान के आदेश को सिरोधार्य किया। राजा इंद्र अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ भगवान उसको लेकर के आए, नहीं तो उसकी हिम्मत थोड़ी थी आने की पृथु महाराज के सामने अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा। किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। उन्हें गुस्सा नहीं आया कि अब अभी माफी मांग रहा है और कितने बार तो यज्ञ को चुरा रहा था तुम, नहीं, भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे किंतु वे राजा पृथु के चरित्र से इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे गए नहीं। देखो भगवान यहां थोड़ी आते हैं पृथ्वी में, वैकुंठ के जो भगवान है वो पृथ्वी में आए पृथु महाराज के कारण आए और अभी भी जान ही रहे हैं, क्यों, पृथु महाराज के कारण बहुत प्रसन्न है पृथु के चरित्र से। अपने कमल जैसे नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, भगवान रुक गए, क्योंकि वे अपने भक्तों के हितैषी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथु महाराज के समान ही अर्जुन के अंदर त्याग की भावना है। अर्जुन में किस भक्त का गुण नहीं है, सभी भक्तों के सब गुण अर्जुन के अंदर हैं, परंतु यहां पर स्थिति दूसरी है। जिस प्रकार इंद्र अपने अपराधों के कारण लज्जित था तथा क्षमा मांगने के लिए पृथु महाराज के चरणों पर गिर पड़ा, उस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं है, धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं है। जिस प्रकार भगवान ने इंद्र को अवसर दिया कि वह पृथु महाराज के निकट आकर क्षमा याचना करे, उसी प्रकार भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी समझाने के लिए गए थे, परंतु उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। तो यह अंतर देवता असुर में, अंतर यह है, देवता भी अपराध करते हैं, असुर भी अपराध करता है, लेकिन देवता जो है क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाता है, असुर क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं होगा, कट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। परंतु उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी बल्कि भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया और अपराध के ऊपर और अपराध, चोरी कहते हैं चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, है ना, और भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। अतः अर्जुन के लिए उचित नहीं है कि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को इस प्रकार अपराध करने का अवसर दें, जितना जिंदा रहेंगे उतना ही अपराध करते रहेंगे। जहां तक युद्ध में पराजित होने की बात है, श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा करने के लिए जरासंध के सामने युद्ध में जानबूझकर पराजित हुए थे। अर्जुन भी कह रहे हैं कि हम पराजित होने में अगर कल्याण है तो हम पराजित हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण भी जरासंध के सामने पराजित हुए, क्यों? जानबूझ के पराजित हुए, क्यों? ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान है ना। तो जब देखते हैं भगवान की अच्छा परिणाम हारने में है तो भगवान हारने के लिए तैयार रहते हैं। जब 70 बार उसकी 23 अक्षौणी सेनाएं श्री कृष्ण के द्वारा मारी गईं, तो 18वीं बार मथुरा में आक्रमण करने के लिए उसने मुहूर्त बताने वाले ब्राह्मणों को बुलवाकर कहा, हे ब्राह्मणों, यदि इस बार के युद्ध में श्री कृष्ण को पराजित करके लौटूंगा तो मैं सदा आप लोगों की विधिवत पूजा करूंगा और आपके चरणों के आश्रित रहूंगा। मुहूर्त बताओ, किस मुहूर्त में हम निकले कृष्ण को पराजित करने के लिए, तो वो मुहूर्त बताओ तुम लोग। अगर कृष्ण को पराजित किया तो तुम्हारी पूजा करूंगा, जीवन भर तुम्हारे चरणों के आश्रित रहूंगा, तब तक आप लोग मेरे कारागार में रहो। कारागार में बंद कर दिया ब्राह्मणों को कि मुहूर्त बताओ तुम और हम कृष्ण को पराजित करने जा रहे हैं, तब तक कारागार में रहो। अगर जीत गए, कृष्ण को हरा दिया, तो जीवन भर आपके चरणों की पूजा करूंगा और आश्रित रहूंगा आपके। यदि हार कर लौटा तो आप सबको मार डालूंगा, ब्राह्मणों को उसने कह दिया, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण साधारण मनुष्य जैसा आचरण करते हुए अपनी मथुरा नगरी को छोड़कर भयभीत होकर भागने लगे। कितना त्याग है। तो अर्जुन भी इसी प्रकार का त्याग प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के जीवन दोनों भाइयों को पैदल भागते देखकर जरासंध बहुत हंसा। अब वो हंस रहा है लेकिन भगवान फिर भी उसकी हंसी को भी सहन कर रहे हैं कि हंस ले, तू जितना हंसना हंस ले। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने जरासंध की सेना को देखकर भयभीत होना स्वीकार कर लिया, जबकि वे केवल अपनी भौहों के सहारे से ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। कृष्ण बिना प्रयास के ही अपनी भौहों के सहारे से ही पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं कृष्ण। अब श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों में अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर वे जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। इस बात से पता चलता है कि अर्जुन यहां पर धृतराष्ट्र के विषय में विचार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा ते वस्ता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, धृतराष्ट्र के विषय में विचार कर रहे हैं अर्जुन। क्या अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान की भावना है? पांडु के बड़े भाई होने के कारण धृतराष्ट्र अर्जुन के पिता के समान है। अर्जुन सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु होने से धृतराष्ट्र का जीवन शोक पूर्ण हो जाएगा। यद्यपि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के साथ पांडवों को मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु फिर भी अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना है। यह भी अर्जुन का देखो कितना बड़ा गुण है। महाभारत के युद्ध में जब धृतराष्ट्र के मंत्री और पुत्र सभी मारे गए तथा पांडवों को अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त हो गया, उस समय अर्जुन अपने भाइयों सहित धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान का व्यवहार करते थे। इस संबंध में हम महाभारत की कुछ घटनाओं का वर्णन करेंगे। 5 पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर 15 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य शासन करते रहे। कितने साल तक किया? 15 साल तक धृतराष्ट्र को ही आगे रख करके। पांडव प्रतिदिन जब धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करते थे तो धृतराष्ट्र स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर उन्हें जाने की आज्ञा देते थे। धृतराष्ट्र को भी बहुत प्रसन्नता होती थी। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य सैया वस्त्र आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ एवं अनेक अनेक भक्ष्य भोज्य पदार्थ धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। महातेजस्वी युधिष्ठिर बिहार और यात्रा के अवसरों पर राजा धृतराष्ट्र को समस्त मनोवांछित वस्तुओं की सुविधा देते थे। पांडवगण ऐसा बर्ताव करते थे जिससे अपने पुत्रों से बिछड़े हुए राजा धृतराष्ट्र को किंचन मात्र भी दुख ना प्राप्त हो। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओर से शोक पाकर कहीं अपने प्राण ना त्याग दें। पांडवों को ये चिंता रहती थी ना? अपने पुत्रों की जीवित अवस्था में धृतराष्ट्र को जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अभी उन्हें मिलते रहे, इसके लिए पांडवों ने पूरी व्यवस्था की थी। धृतराष्ट्र भी उन सबको परम विनीत अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न जानकर पिता की भांति उनसे स्नेह करते थे। उनके उस बर्ताव से राजा धृतराष्ट्र सदा प्रसन्न रहते और अपने उस मंद बुद्धि दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। क्या धृतराष्ट्र क्या सोचते थे दुर्योधन को के बारे में क्या सोचते थे? मंद बुद्धि कि अगर इनके साथ में मित्रता करता तो कितना सुखी रहता, कितना मूर्ख था, इनसे लड़ाई करके मर गया। अगर इनके साथ में दोस्ती करता तो कितना सुखी होता दुर्योधन भी। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि हमने इनको सब प्रकार से संकट दिए इन तो भी ये हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, है ना। राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रों से कभी प्राप्त नहीं हुई थी। उनके पुत्रों ने भी इतनी सेवा नहीं की। इस प्रकार 15 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र की वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा हुई तो उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, आप लोगों को यह मालूम ही है कि कौरव वंश का विनाश किस प्रकार हुआ है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि मेरे ही अपराध से सारा अनर्थ हुआ है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी तो भी मुझ मूर्ख ने उसे राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, मैंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें नहीं सुनी। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा व्यास, संजय और गांधारी देवी ने भी मुझे पग पग पर उचित सलाह दी किंतु मैंने किसी की बात नहीं मानी। ये भूल मुझे सदा संताप देती रहती है। ये पांचों पांडव गुणवान हैं तथापि उनके बाप दादों की यह संपत्ति भी मैंने उन्हें नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पांडवों का राज उन्हें लौटा दूं, परंतु मैंने वैसा नहीं किया। इस तरह की हजारों भूलें मेरे हृदय में कांटों के समान कसक रही हैं। अब मैं इस पाप की शुद्धि के लिए गांधारी देवी के साथ वन में तप करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र की इस बात से युधिष्ठिर आदि पांडव अत्यंत दुखी थे। तब व्यास जी उस स्थान पर आए तथा पांडवों को समझाते हुए बोले, महाबाहु भरत नंदन, राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं और अंतिम अवस्था में स्थित हैं, अतः तुम इन्हें वन में जाने की अनुमति दो क्योंकि अब इनके तप करने का समय आया है। इस प्रकार युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति मिलने पर धृतराष्ट्र ने अपने महल में नगर के वासियों को बुलाकर कहा, सज्जनों, युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूं कि दुर्योधन के राज्य से भी बढ़कर सुख मुझे प्राप्त हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूं, दूसरे बूढ़ा हो गया हूं, तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गए हैं, इसलिए अब आप लोग मुझे वन में जाने की अनुमति दें। मैं इन राजा युधिष्ठिर को धरोहर के रूप में आप सब लोगों के हाथ सौंप रहा हूं और आप लोगों को भी इन वीर नरेश के हाथ में धरोहर की भांति दे रहा हूं। कितना अच्छा बोला, इनको सौंप रहा हूं तुम्हारे हाथ में और तुमको सौंप रहा हूं इनके हाथ में। प्रजाजनों से इस प्रकार कहकर तथा उनकी सद्भावना प्राप्त कर धृतराष्ट्र ने वनवास की दीक्षा ले ली। नहीं तो लोग यही भी सोचते कि पांडवों के द्वारा दुख पाकर के धृतराष्ट्र चले गए जंगल में। ये धृतराष्ट्र ने जो है ना सब बात स्पष्ट कर दी कि मैं दुखी होकर के नहीं जा रहा हूँ, बहुत प्रसन्न होकर के जा रहा हूँ वन में। इसके बाद उनकी इच्छा थी कि भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, बालिक और युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों का श्राद्ध करें। इसके लिए कुछ धन लेने के लिए जब उन्होंने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा तो भीमसेन ने दुर्योधन के अत्याचारों का स्मरण करते हुए जब धन देने से इनकार कर दिया तो अर्जुन ने भीमसेन से कहा, भीमसेन को बहुत नाराजी थी धृतराष्ट्र से, अर्जुन ने भीमसेन से कहा, भाई राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ तथा वृद्ध पुरुष हैं, इस समय वे वनवास की दीक्षा ले चुके हैं और जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदों का श्राद्ध करना चाहते हैं, अतः आपको इस कार्य में धन देने की स्वीकृति दे देनी चाहिए। सौभाग्य की बात है कि आज राजा धृतराष्ट्र हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उलट फेर तो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे वही आज हमसे याचना करते हैं। महाबाहो, उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात ना होगी। कौन कह रहा है? अर्जुन किससे कह रहे हैं? भीमसेन से कह रहे हैं। उन्हें धन ना देने से हमें बहुत बड़ा अधर्म लगेगा। ऐसी बातें कहते हुए अर्जुन की युधिष्ठिर ने बहुत प्रशंसा की, युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन ने ऐसी बात कही तो। परंतु भीमसेन ने कुपित होकर कहा, अर्जुन तुम वह पुराना बैर, वो 12 वर्षों का वनवास और द्रौपदी के शोक को बढ़ाने वाला 1 वर्ष का गहन अज्ञातवास कैसे भूल गए? भीमसेन कहते हैं, उन दिनों धृतराष्ट्र का हमारे प्रति स्नेह कहाँ चला गया था जब तुम सब लोग 13 वर्षों तक वन में जंगली फल मूल खाकर किसी तरह जी रहे थे। उन दिनों ये ताऊ जी पिता के भाव से तुम्हारी ओर नहीं देखते थे। पार्थ, क्या तुम उस बात को भूल गए जब ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र जुआ आरंभ कराकर विदुर जी से बार बार पूछता था कि इस दांव में हम लोगों ने क्या जीता है? इसी ने जुआ कराया, जुआ खिलवाया। भीमसेन की इस बात पर अर्जुन ने उत्तर दिया, तात, आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूं कि राजर्षि धृतराष्ट्र सर्वदा सर्वथा आदर के योग्य हैं। अर्जुन ने कहा कि और तो मैं कुछ नहीं जवाब दे पाऊंगा, इनका आदर सम्मान करना चाहिए, अर्जुन ने कहा। इसके बाद विदुर जी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर संदेश दिया, महातेजस्वी अर्जुन आपको अपना संपूर्ण घर सौंपते हैं, उनके घर में जो कुछ धन है उसे और अपने प्राणों को भी वे आपकी सेवा में समर्पित करने को तैयार हैं। कौन? विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हाँ, अर्जुन के बारे में कह रहे हैं, आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य, प्राण, धन और जो कुछ उनके पास है सब आपको देने के लिए, सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं। परंतु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेशों का स्मरण करके लंबी सांस खींचते हुए बड़ी कठिनाई से धन देने की अनुमति दी है। भीमसेन, धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने भी भीमसेन को समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सद्भावना उत्पन्न कर दी है। जैसे अर्जुन दोनों ने मिलकर के भीमसेन को समझा दिया है। भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों आपसे बार बार क्षमा याचना करते हैं। आप जितना धन दान करना चाहें करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ अर्जुन के अंदर त्याग और सहानुभूति की भावना प्रकट हो रही है। उनका त्याग ये है कि उनके अंदर विजय प्राप्त करने की समर्थ होते हुए भी वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं, तथा सहानुभूति यह है कि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके धृतराष्ट्र को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग की भगवान प्रशंसा नहीं करते हैं। क्या समझे? हम लोग तो सोचते हैं भाई बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन भगवान प्रशंसा नहीं करते अर्जुन के इन विचारों की। गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में वे कहते हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक माना जाता है। गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन ने समझा कि जब तक त्याग और सहानुभूति के केंद्र श्री कृष्ण नहीं होते तब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ही बंधा रहता है। अतः दिव्य स्तर पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी त्याग और सहानुभूति की भावनाएं केंद्रित की जाएं। हरे कृष्णा। तो ये मैंने लेख पढ़ के सुनाया है। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? इनका प्रश्न है कि इंद्र जैसे ईर्ष्या कर रहा है पृथ्वी महाराज से कि उनके स्वयज्ञ पूरे ना हों और इसलिए वो घोड़े को चुरा रहा है, विघ्न डाल रहा है। तो अगर कोई बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो भी इसी प्रकार से करते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और इस प्रकार से चाल चलते हैं, तरह तरह की गंदी चालें चलते हैं, तो फिर उनको हम क्यों गलत कहते हैं जबकि शास्त्र में ये बातें सब लिखी हुई हैं? हाँ, लेकिन इसमें एक बात समझना चाहिए कि इंद्र जो चालें चल रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा गलत नहीं है। जो चालें आजकल के लोग चलते हैं तो क्या करते हैं, किसी को मरवा डालते हैं। इंद्र तो घोड़े को चुरा रहा था किसी प्रकार से यज्ञ पूरा ना हो, आप समझे ना। तो इतना ज़्यादा अपराध तो नहीं था, हालांकि अपराध था, नहीं इंद्र का इतना ज़्यादा अपराध नहीं था, किसी प्रकार से वो घोड़े को चुरा रहे थे, है ना, कि बस कम से कम ये ना हो, है ना। लेकिन आजकल तो क्या होता है राजनीति में, क्या होता है, जान से मरवा डालते हैं, है कि नहीं। तो इंदिरा गांधी को जान से मरना पड़ा, राजीव गांधी को जान से मरना पड़ा, है ना। तो केवल इतनी नहीं है कि भाई किसी का पैर खींचे वो, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं। हालांकि इंद्र का ये अपराध तो था और इस प्रकार से इनको कर्मबंधन भोगना पड़ता है। अगर शास्त्र में बताया गया है कि भाई इंद्र ऐसा कर रहा है तो साथ साथ ये भी बताया जाता है कि फिर इसका कर्मफल भी उसने भोगा, है कि नहीं। तो इंद्र के जो चरित्र हैं कोई ऐसे नहीं है कि वो जो है आदर्श चरित्र हो किसी का। इसके अलावा ये भी एक कारण है कि इंद्र को भोग ऐश्वर्य इतना ज़्यादा प्राप्त है, भोग ऐश्वर्य इतना ज़्यादा प्राप्त है कि कोई व्यक्ति जो है ना इससे बिगड़ सकता है। इस भौतिक संसार में ऐसी स्थिति किसी की नहीं है। इस भौतिक संसार में कोई बड़े से बड़ा जो धनी व्यक्ति है उसके भी जीवन में कई कई प्रकार के दुख मिलते रहते हैं, है ना। लेकिन वहाँ स्वर्ग में इंद्र को जो है इतने भोग ऐश्वर्य प्राप्त हैं और कोई बाधा भी नहीं है। इस भौतिक संसार में नहीं हो सकता ऐसा, आप समझो ना। तो अगर उसको अगर इस बात का घमंड हो और जो है उसका ज्ञान ढक जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो इसलिए इंद्र के कई जो है ना कार्य हैं जिनको कि भगवान क्षमा करते रहते हैं, क्योंकि अगर इंद्र की जगह कोई और व्यक्ति हो, असुर हो, तो वो तो और ज़्यादा, मतलब कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना अपराध करेगा वो इंद्र के स्थान पर। इसलिए भी भगवान जो है उसको सहन कर लेते हैं या कई मामलों में क्षमा कर देते हैं और कई बार फिर इंद्र को दंड देते हैं, थोड़ा दंड देते हैं, ज़्यादा दंड देते हैं, तो करते हैं। इंद्र ने जो है पूरे ब्रजवासियों को मार डालने के लिए, सब गमों को मार डालने के लिए वर्षा कराई, है कि नहीं। तो फिर बाद में इंद्र ने क्षमा याचना की भगवान से, तो क्षमा कर दिया। लेकिन जो असुर हैं उनमें अंतर ये होता है, देवता असुर में अंतर यही होता है कि असुर जो है ना झुकेंगे नहीं। उनका क्या सिद्धांत है, सर कटा सकते हैं पर लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो सर कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे, है कि नहीं। तो ये समस्या होती है असुरों के साथ में। धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी जो है ना अवसर मिला, काफी अवसर मिला कि क्षमा मांग लें, लेकिन नहीं, वो क्षमा नहीं मांगने के लिए तैयार। हाँ, परमानंद केशव प्रभु का प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार धृतराष्ट्र को विदुर जी ले गए और रातों रात जो है ना छिप करके विदुर जी को ले गए, विदुर जी ले गए धृतराष्ट्र को। लेकिन यहाँ पर ये बताएंगे कि धृतराष्ट्र ने स्वयं जो है प्रजाजनों से भी अनुमति ली और युधिष्ठिर महाराज से अनुमति ली और वनवास की दीक्षा ली और मतलब बहुत कुछ बातें हुई। धृतराष्ट्र जब वन में गए तो इसको कैसे समझें? जो मैंने बताई घटना ये महाभारत की है घटना, और जो आप बता रहे हैं वो श्रीमद् भागवत की घटना है। तो महाभारत की घटनाओं में और श्रीमद् भागवत की घटनाओं में कई बार जो है अंतर होता है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि कल्प भेद के कारण ये अंतर होता है। श्रीमद् भागवत में जो बताई गई घटनाएं, ये 5,000 साल पहले जो हुआ था वो घटनाएं हैं, और महाभारत में जो घटनाएं बताई गई हैं वो कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो और दूसरे कल्पों में हुई हैं। तो इस तरह से जो है अंतर होता है। इसके साथ साथ कृष्ण का चरित्र भी जो है ना प्रत्येक पुराण में मिलता है, और कई बार तो ऐसी ऐसी अंतर मिलते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा कैसे हुआ? तो बहुत जो है ना अंतर है। राम का चरित्र भी जो है ना सब पुराणों में मिलता है, और सब में कुछ ना कुछ अंतर है, और कई बार ऐसा अंतर है कि बिल्कुल परस्पर विरोधी बातें होती हैं। अगर आप इसको मानोगे तो फिर वो हो ही नहीं सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो इसका जो है ना मतलब इसमें कुछ संदेह करने की बात नहीं है, क्योंकि कल्प भेद से मैंने बताया कल्प भेद, प्रत्येक कल्प में, कल्प समझते क्या होता है, ब्रह्मा का एक दिन। तो ब्रह्मा के एक दिन में मतलब हर बार कृष्ण का अवतार होता है, और जब कृष्ण का अवतार होता है तो तरह तरह से मतलब लीलाएं होती हैं, आप समझे ना। तो इसलिए उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि नियत कर्म को त्याग करके कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लग जाए तो फिर उसमें अपराध नहीं है? हाँ, उसमें अपराध नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि अपने सुधर्म को त्याग करके, तो कोई व्यक्ति अगर अपने सुधर्म का त्याग करके अगर भगवान के चरण कमलों का भजन करे है ना, और उससे अगर गिर भी जाए, कृष्ण के भजन से अगर गिर भी जाए है, तो भी उसका क्या नुकसान है? को वार से आप तो अभजताम सुधर्मता है। लेकिन अगर जो है ना भगवान के चरणों का भजन ना करे तो सुधर्म का पालन करने से भी क्या लाभ? मतलब यही है कि जो नियत कर्म है या सुधर्म है, इनका पालन करने का जो फल है वो क्या है कि कृष्ण के चरण कमलों में श्रद्धा पैदा हो, है ना। तो सब कुछ जो है मतलब इसीलिए होता है कि कृष्ण की शरण ली जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग करके एक मेरी शरण में आओ। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुजा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम शोक मत करो, है ना। तो पाप का मतलब यही है कि आप अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। तो एक पागलपन अगर किसी के अंदर आ जाए इस प्रकार का कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण का दर्शन करना है ना, तो फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पागल हो गए कृष्ण के लिए हैं। तो जवान पत्नी और बूढ़ी माँ और उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, लेकिन संन्यास ले लिया और जो है ना भाग गए घर छोड़ करके, रात में जो है ना आधी रात में वो अपनी सोती हुई पत्नी और माँ को छोड़ करके चले गए, है ना। तो ये दिखलाया उन्होंने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए छोड़ देता है अपनी माँ को पत्नी को है, इंद्रिय तृप्ति करता है, तो फिर उसको तो पाप लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कृष्ण की प्राप्ति के लिए अगर वो पूरी दुनिया को भी छोड़ दे, है ना, तो कोई भी उसको पाप नहीं लग सकता है ना। लेकिन कोई व्यक्ति घर छोड़ करके आ जाए, यहाँ मंदिर में रहे, है ना, और फिर मंदिर के नियमों का पालन ना करे और इंद्रिय तृप्ति करे, तो फिर तो वो जो ना मिथ्याचारी है कि नहीं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि फिर जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना। अगर इधर पूरी तरह से अगर लग जाए कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों में, अपने मन को पूरी तरह से लगा ले, तो फिर उसके लिए फिर कोई भी कर्तव्य नहीं होता है ना। और भगवान भी कहते हैं योग क्षेम महाम्यम, उसकी योग और क्षेम मैं पूरा करूंगा, उसका योग क्षेम पूरा करूंगा, तो उसके जितने भी कर्तव्य हैं वो सब मैं पूरा करूंगा, तो फिर भगवान क्यों नहीं पालन करेंगे हैं उसके कर्तव्य का, जो उस पर आश्रित हैं तो भगवान क्यों नहीं उनकी देखभाल करेंगे, है ना। तो इनका प्रश्न है कि प्रबोधिनी पुस्तक में लिखा है कि भगवान की शरण लेकर के तुच्छ स्त्रियां भी परम गति प्राप्त कर सकती हैं, तो क्या स्त्रियां तुच्छ होती हैं? हाँ, स्त्रियों में ये माना गया है कि कुछ ऐसे दुष्कर्म हैं जिनके कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधाएं होती हैं, जबकि पुरुष स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान की शरण लेकर कोई भी जीव परम गति प्राप्त कर सकता है, तो फिर ब्राह्मण और क्षत्रियों को परम गति मिले तो क्या कहना। तो स्त्रियों को पापयोनि नहीं कहा जाता है, परंतु पुरुषों की तुलना में उनके पास कम स्वतंत्रता तथा कार्य करने की क्षमता भी कम होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कई प्रकार की असुविधाएं होती हैं
कि वे जो है साधु संग नहीं कर सकती हैं हमेशा, वो जो है ना, जैसे पुरुषों के पास स्वतंत्रता होती है उतनी स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, उतनी सुविधाएं उनके पास नहीं है, तो इस दृष्टि जो ना मतलब स्त्रियों को जो है मतलब ये माना गया है कि उनके पास इतने अवसर नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी भगवान की शरण ले सकती है और भगवान किसी भी स्त्री को शरण दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि अगर आश्रय ले कोई स्त्री भी और जो है ना पाप क्यों नहीं। इनका प्रश्न की चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में लिखा है कि कृष्ण का आकर्षण स्त्रियों के प्रति ज्यादा होता है और ज्यादा ज्यादा कृपा करते हैं स्त्रियों के प्रति, नहीं वो दिखा देना क्या लिखा है ऐसा मतलब नहीं है। भगवान तो कहते हैं समोहम सर्व भूतेषु न मे द्वेष्योस्ति ना प्रिया, भगवान के लिए स्त्री और पुरुष के मैं कोई अंतर नहीं है। ये भजन थी तमाम भक्तिया मैं थे तेसु चाहते, हम जो भक्ति से मेरा भजन करें तो जो ना मैं उनका हूँ वे मेरे हैं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कोई स्त्री हो या जो ना कोई पुरुष हो, भगवान के लिए इन चीजों का कोई अंतर नहीं है। ये तो स्त्री है पुरुष ये तो भौतिक शरीर में लिपटा हुआ जीव है, ठीक है ना। तो ये तो जो है भगवान अवसर देते हैं किसी को भी, जो भी कृष्ण के चरणों में आना चाहता है तो कृष्ण उसको अवसर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर असहाय है कोई भी जीव, अगर असहाय है दीन है, तो भगवान को दीन बंधु कहा गया है ना। तो स्त्री भी जो है ना अगर दीनता से असहाय में असहाय अवस्था में अगर भगवान को याद करती है तो भगवान उसको सहारा देंगे। तो स्त्रियों में जो है कई मामलों में ऐसे बंधन होते हैं और मजबूरियां होती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं पुरुषों की जगह, तो भगवान स्वाभाविक है कि वो सहारा देंगे और कृपा करेंगे, है ना। लेकिन एक बालक भी हो सकता है, एक बच्चा भी जो है ना, जैसे ध्रुव महाराज हैं तो उन पर भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, है ना। तो स्त्री है, बालक है, वृद्ध है कि नहीं, तो इन पर भगवान दया करते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के ऊपर भी दया करते हैं भगवान, क्यों, गजेंद्र एक हाथी था है कि नहीं, तो वो भी अपनी मजबूरी में भगवान को याद कर रहा है तो भगवान उसकी उस पर भी कृपा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान तो जो है ना सबके पिता है, पिता हम भगवान कहते हैं ना कि सर्व जगतो माता धाता है पितामह, है ना, पिता हमस्त जगतो माता धाता पितामह, इस जगत के पिता मैं हूँ इस जगत का। तो भगवान जब पिता है तो वो जो है स्वाभाविक है उनमें दया। लेकिन जब दीन हो कोई व्यक्ति, दीनता से भगवान को याद करे। लेकिन हाँ, पुरुषों में जो है ज्यादा अभिमान देखा जाता है, क्योंकि उनके पास शक्तियां होती हैं, कई प्रकार के साधन होते हैं, है ना, तो धन का बल होता है और जो है अपने शरीर का बल होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो फिर भगवान दूर हो जाते हैं उससे, है कि नहीं। लेकिन फिर स्त्रियों में भी कई प्रकार की स्त्रियां होती हैं, कोई बहुत जो है ना दुष्ट स्वभाव की होती हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का विभाजन किया है ना, तो वो स्त्री में भी हो सकता है आसुरी भाव और पुरुषों में भी आसुरी भाव हो सकता है। दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव का भगवान ने वर्णन किया है और कहा दैवी संपत्ति में मोक्ष है निबंध है आसुरी मता, जो दैवी संपत्ति है वो बंधनकारी है नहीं, दैवी संपत्ति में मोक्ष है, दैवी संपत्ति बंधन से छुड़ाती है और आसुरी संपत्ति बंधनकारी होती है ना। तो द्रौपदी हैं और पांच पांडव हैं, भगवान बराबर कृपा करते हैं, कोई अंतर नहीं है ना। अर्जुन जब कष्ट में होते हैं तो भगवान अर्जुन की भी सहायता करते हैं, द्रौपदी कष्ट में होती है तो भगवान द्रौपदी की भी सहायता करते हैं, है ना। भगवान जो है निर्बल के जो है बल है, निर्धन के धन। नमो अकिंचन वित्त आए, अकिंचन वित्त, जिसको किसी चीज का घमंड नहीं है कि मेरे पास धन है मेरे पास बल है, तो वो भगवान को जो ना प्राप्त कर सकता है। और कोई प्रश्न किसी का, इनका प्रश्न की चैतन्य शिक्षा में मिला है, मैंने देखा है कि राधा की संपत्ति कृष्ण है, तो कृष्ण राधा की संपत्ति क्यों है। राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, प्लेजर पोटेंसी, भगवान को जो है आनंद देने के ही लिए राधा रानी है। तो राधा रानी क्योंकि भगवान को आनंद देने के पूर्ण रूप से समर्पित हैं, कृष्ण के आनंद में है, इसलिए भगवान कृष्ण भी समर्पित हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तान तथा भजामि हम, जो जिस प्रकार से मेरे शरण में आते हैं मैं उनका उसी प्रकार से भजन करता हूँ, है कि नहीं। तो राधा रानी में जो भाव है जिस प्रकार से, वो राधा रानी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। राधा रानी के भाव को समझने के भगवान स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करते हैं, है ना। तो भगवान भी नहीं समझ सकते राधा रानी के भाव को, इसलिए उन्हें खुद चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ता है राधा रानी के भाव को जानने के लिए, देखने के लिए, है ना। तो आप सोचिए कि राधा रानी का कैसा ऊंचा भाव है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता के जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के श्री श्री गोंडताय भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।